1857 की क्रांति के महानायक नाना साहब के विषय में कहा जाता है कि क्रांति के बाद अंग्रेज उन्हें सारे भारतवर्ष में ढूंढते रहे पर ढूंढ नहीं पाए। उनकी मृत्यु के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। नाना साहब मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा के पुत्र थे जिनके साथ मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। क्या यह पार्ट प्रजापिता का नहीं हो सकता?
नाना साहब का भी पार्ट हो सकता है और लक्ष्मीबाई के पति का भी पार्ट हो सकता है और सारे पार्ट उसी के हो सकते हैं।
अगर गंगाधर राव का हो गया फिर तो इनका नहीं होगा। टीवी पर एक सीरियल आया था राज पिछले जन्म का, जिसमें कोई महिला प्रसिद्ध व्यक्तियों या कलाकारों के मुख से उनके पिछले जन्म की कहानी बुलवाती थी फ्रांस में ले जा करके, जिसका नाट्य रूपांतर दिखाया जाता था और वो ऐसी बातें दिखाते थे जिसको साबित भी किया जा सकता है और जिसका वर्तमान जीवन की किसी कमजोरी या डर से संबंध होता था। तो वो किस शक्ति के आधार पर ऐसा कर लेते हैं? वो
भूत प्रेतन की शक्ति के आधार पर।
भूत प्रेतन
कोई तांत्रिक होते हैं तो किसी आत्मा को किसी में प्रवेश करा देते हैं। वो पूर्व जन्म की बातें एक दो जन्म की बता सकती है, 84 जन्मों का हिसाब किताब कोई नहीं बता सकता।
You asked about a TV serial which was shown. Mm-hmm. In this, a female used to make people go into trance. Mm-hmm. And they depicted about the previous birth. Mm-hmm. And he even said that there could be proofs obtained from this. Mm-hmm. So on what basis, on the power of what could she do that? Mm-hmm. Baba said on the basis of bhoot pret. Mm-hmm. That is bhoot pret, the evil soul.
Ghosts and spirits.
So these ghosts and spirits can enter in someone's body and they can tell about 1, 2 or 3 births, but no one can tell about the 84 births, the secret of 84 births, except for Shantaku.
Baba said we will talk
to
about our births at the end.
Baba कहते हैं कि हम अपने जन्मों के बारे में अंत में जान जाएंगे।
वो हम किस आधार पर जान जाएंगे?
On what basis?
उस पर तो बताए हुए आधार है।
No, we will come to know. But on what basis? Would it be on the basis of ghosts and spirits?
No. So, yeah, on the soul consciousness.
आत्मिक स्थिति के आधार पर।
आत्मिक स्थिति के आधार पर भी नहीं जान जाएंगे।
Even not on the basis of soul consciousness.
बाबा के दिए हुए ज्ञान के आधार पर जान जाएंगे।
On the basis of knowledge that Shri Baba
knows.
Does Baba
know what he's saying?
क्या बाबा जानते हैं अपने 84 जो?
बाबा माने शिव बाबा। बाबा माने सिर्फ शरीरधारी नहीं।
बाबा मीन्स शिव बाबा, नॉट ओनली बाबा डज नॉट ओनली मीन द बॉडी बी कंबाइंड
कंबाइंड।
अंत में जो आत्माएं माउंट आबू में रहेंगी उनका क्या मापदंड होगा? क्या जिन्होंने भी वहां जमीन ले ली है वो सब वहां रहेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने वहाँ जमीन ली है वो अपने अपने पोशाक के आधार पर अंत समय में किसी और धर्मखंड में भी चले जाएं?
बीज रूपात में तो अलग अलग धर्मों की भी होती है।
वो तो भले ही उन्होंने जमीन ली हो लेकिन वो अपने पोशाक के आधार पर दूसरे खंडों में भी जा
सकते। सेवा करने के लिए उनको भेजा जाएगा दूसरे धर्मखंडों में भी। माने जो जिस धर्मखंड की आत्मा होगी उसी धर्मखंड में जाके उनको सेवा करनी पड़ेगी।
और जिन्होंने जमीन ना भी दी हो वो भी हो सकता है अपने पुरुषार्थ के आधार पर अंत में वहाँ पहुँच जाएंगे।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
You asked that some people, those who bought land in Mount Abu, lands in Mount Abu, is it possible that in the end they are sent to some other nations, other parts of the world for service, and those who haven't bought the lands, is it possible that they are made to stay there? In the end, Baba says in the advance there are all seed form souls. Mm. So they, to whatever religious sect they belong, they will have to finally go to that sect to do service. Mm-hmm. So it is not that those who have purchased will stay there or those who haven't purchased they will not stay there. Yeah. It is on the basis of their quality of soul, the religious sect into which the soul is connected.
आबू के बारे में एक पौराणिक कहानी है कि गुरु विश्वामित्र से मतभेद होने के बाद गुरु वशिष्ठ यहाँ आकर बस गए। गुरु वशिष्ठ की गाय नंदिनी आबू की गहरी घाटी में फंस गई, उसे बचाने के लिए गुरु वशिष्ठ ने शिव की तपस्या की जिससे सरस्वती नदी का पानी घाट में भर गया और नंदिनी ऊपर आ गई और बच गई। बाद में अर्बुद नामक सांप की मदद से यह पानी आबू में टिका रहा। इस अर्बुद सांप के नाम पर उस पर्वत का नाम अर्बुद पर्वत पड़ा।
पानी टिका रहा फिर वो पहाड़ बन गया। पानी कैसे पहाड़ बन जाएगा?
नहीं, पानी तो शायद वो नक्की झील के लिए कह रहे होंगे, वो उसका यादगार होगा। लेकिन वो जो अर्बुद सांप के मदद से जो वो पानी वहाँ टिका रहा उसके आधार पर उसका नाम जो है अर्बुद पर्वत पड़ा। दो कथाएं हैं ऐसी, मतलब कि भाई आबू नाम क्यों पड़ा उसका, माउंट आबू का। और एक और कथा के अनुसार जो है अर्बुदा देवी के नाम पर इस पर्वत का नाम अर्बुद आबू पर्वत पड़ गया।
सांप के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है, ये बात तो ठीक है। पृथ्वी का जो हिस्सा बिल्कुल सांप के फन के ऊपर आता है वो अरुणाचल पर्वत हुआ, वहां तक ठीक है। सांप कौन है? जो विष्णु के ऊपर छत्रछाया बन के रहता है।
शेषनाग।
हाँ, कौन है? अरे कितने मुंह दिखाए जाते हैं उसको?
सात
मुख दिखाए जाते हैं। सात नारायण है ना, सातों नारायण किसकी भाषा बोलते हैं?
वो तो विधर्मी है,
ब्रह्मा बाबा की भाषा बोलते हैं ना।
वो मतलब गुरु वशिष्ठ है।
वशिष्ठ माने प्योरिटी वाले।
हाँ जी।
और विश्वामित्र माने जिसमें प्योरिटी नहीं थी लेकिन विश्व का मित्र था, विश्व पिता था, पुरुषार्थ से सब कुछ लेता था, पुरुषार्थ से स्वर्ग की रचना करता था।
तो लेकिन यहाँ जो बताया गया कि भी गुरु विश्वामित्र से मतभेद के बाद गुरु वशिष्ठ यहाँ आकर बस गए, तो ये भी क्या संगम युग की किसी घटना का ही
मतभेद है कि आदि का है? नहीं,
उस सिंध में आदि में जो है मतभेद हो गया, फिर बाद में वहाँ से ये लोग इधर आ गए।
हाँ, मतभेद न होता तो लोहे के बक्स के अंदर पुराना लिटरेचर क्यों छुपा के आते?
साथ में ले आते।
हाँ, साथ में ले आते, मतभेद था इसीलिए तो छुपाया।
कुड यू टेल द स्टोरी व्हिच यू टोल्ड अबाउट वशिष्ठ एंड विश्वामित्र?
आई नरेटेड अ स्टोरी टेकन फ्रॉम इंटरनेट अबाउट आबू। अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी गुरु विश्वामित्र केम टू माउंट आबू आफ्टर डेवलपिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद गुरु विश्वामित्र। And the cow of Guru Vashishth, which was named Nandini, she was stuck in the deep ravines of Mount Abu. So in order to save her, Guru Vashishth performed the penance of Shiva. And because of that, the water of river Saraswati got filled in that valley. And the cow Nandini came up. And so she was saved. And later on, a snake named Arbud helped in retaining that water within the Mount Abu. So, because of the snake named Arbud, this mount was named as Mount Abu. So, for that, Baba was giving clarification that the snake Arbud refers to the Sheshnag. Sheshnag is shown to have seven heads. So these seven heads represent the seven Narayans. So they are all followers of Brahma. They speak the language of Brahma. And when I asked about Guru Vishwamitra developing differences of opinion with Guru Vashishtha, so he said that in the beginning of the yagya also, Guru Vashishtha means Brahma soul, and Vishwamitra, that is friend of the world, is the father of the world, Jagat Pita. They had differences of opinion in the beginning of Yajna. So, because of that, later on Brahma Baba shifted from Pakistan to Mount Abu. So, Baba was telling it was because of the differences of opinion only that he left all the Murlis in a iron trunk in Sindh, Hyderabad. Otherwise, the original language, knowledge, everything was stuck up and buried in that trunk, iron trunk. Had he not developed differences, he would have brought that trunk to Mount Abu along with all other belongings. माताजी कह रही कि भाई कुछ लोग अभी ढूंढ रहे हैं उसको लोहे की पेटी को जिसमें वो आदि का ज्ञान सारा भरा हुआ है.
हो सकता है.
इट इज पॉसिबल.
दे विल गेट इट राइट टाइम.
सही समय पर उनको मिल जाएगा. अगला प्रश्न है, जब रुद्रमाला विजयमाला से श्रेष्ठ है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रुद्रमाला के मणके विजयमाला में पिरोए जाएंगे? ऐसा क्यों नहीं कहते कि वे विजयमाला के मणके रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे?
रुद्रमाला जो है वो बाप की माला है. किसकी माला है?
बाप की माला.
बाप की माला है. और विजयमाला विष्णु की माला है. तो विष्णु ज्यादा श्रेष्ठ है या बाप ज्यादा श्रेष्ठ है?
विष्णु अंतिम पुरुषार्थ
है. वो तो पुरुषार्थी है. और जो पुरुषार्थ नहीं करता है, शिव बाबा को ज्ञानी तो आत्मा क्यों प्रिय है? और ज्ञानी तो आत्मा रुद्रमाला में है या बाहर है?
ज्ञानी तो आत्मा तो रुद्रमाला में.
बस यही कारण है.
तो नहीं, जब वो रुद्रमाला ज्यादा श्रेष्ठ है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वे रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड किए जाएंगे?
हाँ, और ज्यादा पतित हो जाते हैं ना
रुद्रमाला के मणके.
हाँ, ज्यादा पतित हुए हैं, ज्यादा नीचे गिरे हैं, इसलिए तो उनको फिर संकरंग मिलना जरूरी है.
लेकिन उठेंगे भी तो ज्यादा यही.
हाँ, जब ज्ञान सुनाते हैं, जैसे होता है कि कोई बड़ा आदमी आ जाता है ज्ञान सुनने के लिए तो सबको नशा चढ़ जाता है कि नहीं? पुरुषार्थ का नशा चढ़ता है ना. तो ऐसे ही है, अभी बेसिक में और एडवांस में सारे ही इंतजार कर रहे हैं कि विजयमाला से लक्ष्मी निकले. और जब वो बड़ा आदमी निकल आएगा तो नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा?
चढ़ेगा.
चढ़ेगा. ब्रह्मा बाबा को भी सन 47 में, वो तो यज्ञ के आदि से ही लगभग भाग गए थे जब झगड़ा शुरू हुआ था. सिंध हैदराबाद छोड़ करके चले गए, पता नहीं चला कहाँ. वो तो बाद में पता चला कराची गए. लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, तो उस समय जिन कन्याओं माताओं को सात ताले में बंद रखा जाता था उनको मौका मिल गया भागने का. वो सारी इकट्ठी हो गई ब्रह्मा बाबा के पास जाकर के. तो ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? नशा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया. बस मुरली चलने लगी. हिम्मत की तो शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया.
उस दौरान जब यहाँ कराची आ गए थे तो उस समय जब लोगों को पता नहीं था तो उस समय यज्ञ की संभाल तो वो माता ही करती थी.
हाँ, सिंध हैदराबाद में.
हाँ जी.
हाँ, करती थी
माँ बाबा के द्वारा. कुछ
उस समय नहीं होता था. सन 47 से मुरली निकलती चली आई है.
माना जब ये
सब इकट्ठी हो गई
छूट के आ गई तब इनको
उमंग उत्साह आया.
शिव की प्रवेशता हुई और फिर बाद में मुरली.
हाँ, तो प्योरिटी से ही उमंग उत्साह आती है ना. पवित्रता ही उमंग उत्साह को बढ़ाती है ना. और
यस दैट व्हेन विजयमाला रुद्रमाला इज सुपीरियर टू द विजयमाला देन व्हाई इज इट सेड दैट विजयमाला द सोल्स ऑफ रुद्रमाला दे विल बी एडेड टू दैट ऑफ द विजयमाला व्हाई इज इट नॉट सेड अदरवाइज. Baba said, though they are superior, the reason for Rudramala being superior is because it is the mala of father, the rosary of father. And Vijayamala is the mala of Vishnu. Vishnu makes a Purusharth, but father does not need to make a Purusharth. So Rudramala, the beads of Rudramala are superior to those of Vijayamala. But they become more degraded, more impure compared to those of Vijayamala. So they need to come in the color of company of Vijayamala to get in an elevated position. So for this Baba said that when some renowned person comes to give a lecture, then everybody is intoxicated by that knowledge. So this big person word Baba used for Lakshmi. Even in the BKs as well as the PBKs, everyone is waiting for that part of Lakshmi to be. So when that big personality Lakshmi would come, everyone will be intoxicated by that knowledge. Baba also told about the beginning of the yajna, that when those kanyai, that is the virgins who were locked behind seven locks in the during the partition of India and Pakistan, when they got a chance to free themselves, they went to Brahma Baba, and Brahma Baba was intoxicated by it, very much that is Baba said nasha. He gets intoxicated, and because of this he makes an effort, and Shiv Baba enters Brahma Baba. So this goes as well for the beginning of the yajna for Brahma Baba.
जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए यही बात लागू होती है, ऐसे ही अंत में राम वाली आत्मा के लिए ये बात लागू होती है। ब्रह्मा बाबा के संगी साथियों के लिए जैसे ये बात लागू होती है, वैसे ही राम वाली आत्मा के रुद्रमाला के मणकों के प्रति भी यही बात लागू होती है। जब वो आएगी विजयमाला की हेड, तो नशा चढ़ जाए, इसलिए गायन है। कौन सी नशे का?
नारायणी
नशे का, उस समय का गायन है।
Baba says, just as it was applicable
to Brahma, the
beginning of the yajna, the same thing will be applicable to the soul of Ram in the end of the yajna. Means when the head of Vijayamala will come to join here, then the soul of Ram and other beads of Rudramala, they will also get zeal and enthusiasm, and they will get elevated. बाबा जगदम्बा के लिए कहा जाता है कि वो 108वां मणका है, और प्रश्न ये उन्होंने पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 108वें मणके की प्रत्यक्षता दूसरे मणके से लेकर 107वें मणके से पहले हो गई। उनकी तो पहले घोषणा कर दी थी कि भाई वो आखिरी मणका है, तो दूसरे से लेकर 107वें मणके तक जो है उनकी प्रत्यक्षता पहले क्यों नहीं हुई?
प्रत्यक्षता को जन्म कहा जाता है ना, कहा जाता है। जो जन्म पहले लेता है वो बड़ा होता है, या जो जन्म बाद में लेता है वो बड़ा होता है?
जन्म पहले लेता।
असुरों का जन्म पहले हुआ या देवताओं का जन्म पहले हुआ? कौन बड़े थे, कौन छोटे थे?
असुर
हैं, असुर बड़े थे ना। ऐसे यहाँ भी है, जगदम्बा की प्रत्यक्षता पहले होना जरूरी है, क्योंकि वो चंद्रवंशी है। चंद्रवंश से ही रावण राज्य निकलता है। रावण संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाले सब कौन से वंश से निकलते हैं?
चंद्रवंश
से। और वो तो सूर्यवंशी है। कौन?
दूसरे नंबर
अष्ट है,
दूसरे
अष्टदेवों में से जो भी हैं वो तो सूर्यवंशी है। तो सूर्यवंशी पक्के देवता हैं या कच्चे देवता हैं? पक्के देवता हैं, तो वो ही है, तो वो बाद में प्रत्यक्ष होंगे।
लास्ट अबाउट जगदम्बा, एक्चुअली दी 108th बीड ऑफ दी माला, व्हाट बाबा सेज 108 की माला। सो द क्वेश्चन वाज, व्हाई इज हर पार्ट रिवील्ड बिफोर दैट ऑफ द सेकंड टू दी 107th बीड? That is after the first beat, why is directly the 108th beat, that is Jagdamba, her part revealed before the others? So Baba says that revelation is said to be a birth, that is Pratakshita Jan ki tarah, Baba says. So demons are born before deities. So Baba compares it with that the soul of Jagdamba is being compared to deities, that is the Ashtadev. So he is not calling directly, he is just comparing the soul of Jagdamba to the Ashtadev. They are the deity souls. So as demons are shown to have taken birth before deities, in the same way the 108 deed is shown to have been revealed before the Ashtadev, the real Suryavanshis. These eight Suryavanshis are the genuine deity religion, belonging to the genuine deity religion.
अव्यक्तवाणियों में कहा जाता है कि विदेशी भारतवासियों को जगाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत वाले विदेशी और उत्तर भारत वाले स्वदेशी हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में विदेशी और भारतवासी किन्हें कहेंगे?
दक्षिण भारत वालों को नहीं कहा है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। आत्मा स्वदेशी या विदेशी नहीं होती है। जो आत्माओं ने दक्षिण भारत में जन्म लिया है वो सब विदेशी हैं। क्या पूर्व जन्म में उन्होंने कभी उत्तर भारत में जन्म नहीं लिया होगा?
लिया होगा।
फिर तो प्रश्न को रिफॉर्म करके बोलो।
मैं वो पूछना चाह रहे थे शायद कि भाई बीके और पीवीके की कंपैरिजन में जो है कौन स्वदेशी कौन विदेशी हुए। जो मतलब भारतवासियों को जगाएंगे तो वो उस संदर्भ में पूछना चाह रहे थे। एक्चुअल में
बीके में भी तो दूसरे धर्म वाले भी हैं या नहीं है, और विजयमाला वाले भी हैं या नहीं है, तो सारे बीके को क्यों उठा रहे?
उनमें जो विजयमाला माना सूर्यवंशी हैं,
सूर्यवंशी है नहीं,
चंद्रवंशी के बीज,
चंद्रवंशियों के बीज हैं, पक्के चंद्रवंशियों के 100% बीज हैं,
तो वो स्वदेशी हुए।
हाँ, वो ही स्वदेशी है, बाकी सब विदेशी हैं क्योंकि कन्वर्ट होने वाले हैं।
तो उनको जगाएगा कौन? जो एडवांस पार्टी के विदेशी हैं
वो उनको जगाएंगे,
वो उनको जगाएंगे।
हाँ, जो जिसके निमित्त है वही जगाएंगे।
वही ये पूछना,
दूसरे धर्म के बीज हैं वो दूसरे धर्म वालों को जगाएंगे, जो स्वदेशी के बीज हैं वो स्वदेशियों को जगाएंगे। और
इन द अवेक्टवाणीज इट इज सेड दैट द विदेशी विल अवेकन द भारतवासीज। इन द एडवांस नॉलेज इट इज सेड दैट द रेजिडेंट्स ऑफ साउथ इंडिया are Videshis and the residents of North India are Swadeshis. But in the world of Brahmins, who will be called Videshis and who will be called Bharatvasis? So Baba said that it is not the soul which is Swadeshi or Videshi. It is the body which takes birth in South India or North India. But the soul might have taken birth in the North India also. So the soul is Videshi or Swadeshi. But then I asked him that within BK and PVK world, who is Swadeshi and who is Videshi? So Baba said even in the world of BKs, there are souls of all the religions. So among them, those who are Chandravanshis, among the BKs, they are the Swadeshis. So they will be awakened by the souls of advanced party, who are considered to be Videshis. So ना एडवांस पार्टी में जो चंद्रवंश के बीज हैं वो उन चंद्रवंशियों को जगाएंगे।
हाँ, बीज रूप हैं, हाँ। वो ज्यादा पावरफुल हैं, वो उनको जगाएंगे।
और वैसे ही जो एडवांस पार्टी में दूसरे धर्म की आत्माएं वो
दूसरे धर्म वालों को जगाएंगे जो चंद्रवंश में दूसरे धर्म के।
दोस चंद्रवंशीज अमंग द एडवांस पार्टीज विल अवेकन द चंद्रवंशीज दैट इज स्वदेशीज अमंग द बीकेज। एंड सिमिलरली सोल सीड्स ऑफ अदर रिलीजन्स will awaken the seeds of their respective religions from the BK world. अगला प्रश्न है, आदि के 9 लाख की जनसंख्या किसको कहेंगे, जिनको भगवान के आने की पॉजिटिव खबर मिली या जिनको नेगेटिव खबर मिली? वो भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि नेगेटिव खबर तो दूर दूर तक फैली थी समाचार पत्रों के द्वारा।
जो विदेशी हैं वो नेगेटिव लेने वाले हैं या पॉजिटिव लेने वाले हैं?
तो नेगेटिव रूप में लेंगे।
नंबर वार विदेशी हैं, नंबर वार स्वदेशी हैं।
माना जहाँ जहाँ समाचार पहुँचा वो सारे उसमें
9 लाख थे ना उसी समय आबादी सिंध हैदराबाद
सिंध हैदराबाद की थी, लेकिन समाचार तो दूसरे प्रांतों में भी पहुँचा होगा ना।
उतना नहीं,
भगवान आया
उतना नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल प्रभाव देखने में आया लोगों को।
लेकिन अगर
जो जाते थे वो साक्षात्कार में चले जाते थे, वहाँ प्रैक्टिकल प्रभाव देखने में आया। दूर दूर वालों को तो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है,
लेकिन समाचार तो पहुंचा होगा।
वो समाचार का प्रभाव तो तब पड़ेगा जब प्रैक्टिकल सामने हो। तो सिंध हैदराबाद में प्रैक्टिकल देखने में आ रहा था लोगों को, जल्दी से आवाज फैल गई।
माना ये 9 लाख वाले सब वहीं सिंध हैदराबाद
उस समय थे, पश्चिम में चले गए पूरब वाले।
were limited in Sindh Hyderabad or they were also in other adjoining areas. Baba said mainly they were only in Sindh Hyderabad because there it was they could see all these things happening in practical sense. So the message spread immediately, instantly in that area itself, and all these souls were confined in Sindh Hyderabad.
9 lakhs
souls.
अगला प्रश्न है, यदि आदि में शिव ने यज्ञ माता और यज्ञ पिता दोनों में एक साथ प्रवेश किया तो फिर शिव एक व्यापी कैसे साबित हो सकता है?
मुकर्रर और उसकी बात है ना,
टेम्परेरी
की नहीं है। तीसरी आंख शंकर को ही दिखाई जाती है, तीसरी आंख किसी देवी को भी दिखाई जाती है,
महाकाली को भी।
तो फिर मुकर्रर कौन है?
वो तो महादेव हो।
फिर जो मुकर्रर है उसके लिए है,
उनमें सिर्फ टेम्पररी सुनने सुनाने के लिए।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा हो चाहे जगदम्बा हो।
इन द बिगिनिंग शिव वी से दैट बाबा सेड दैट शिव सुप्रीम सोल एंटर्ड इन राम सेवक एंड
यज्ञ माता
एंड यज्ञ पिता साइमल्टेनियसली, देन हाउ वुड बी ही बी कॉल्ड टू बी प्रेजेंट इन वन? बिकॉज ही एंटर्ड साइमल्टेनियसली टू बॉडी, देन हाउ कैन वी से दैट गॉड गेट्स रिवील्ड इन वन एज वन? तो बाबा सेज इट इज अबाउट द परमानेंट एंड अ टेम्परेरी चैरिट। द थर्ड आई ऑफ नॉलेज विच इज शोन, इट इज शोन ओनली इन महादेव, नॉट टू महाकाल। So Mahadev is the permanent chariot. In that sense, he is only present in one.
Baba, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के समय भी एक व्यापी वाली बात अभी कई लोगों के मन में क्लियर नहीं हुई है कि आज जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब राम वाली आत्मा के तन में भी शिव की प्रवेशता होती थी। राम वाली आत्मा ज्ञान में तो नहीं थी, जैसे सन 47 या 42 से लेके जो है 69 तक जब तक राम वाली आत्मा दोबारा ज्ञान में नहीं आई, तो तब तक माना तो यही जाता है कि वे शिव ने माँ के रूप में ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य किया। तो क्या उस समय भी राम वाली आत्मा में शिव की प्रवेशता होती थी?
ये कोई बात है
जो बेसिक नॉलेज जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो एडवांस में ऊपर ऊपर बीएमए की नॉलेज कैसे पढ़ लेगा?
माना उस समय प्रवेशता केवल ब्रह्मा बाबा के तन में हुई
है,
उसके बाद तो फिर एक व्यापी है ही
है?
उसके बाद तो फिर एक व्यापी है ही 69 के बाद।
हाँ।
ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद।
हाँ।
फिर तो एक व्यापी है ही, लेकिन जब तक ब्रह्मा बाबा और राम वाली आत्मा दोनों जीवित थे उस समय का ये डाउट था कि भाई उस समय क्या दोनों में प्रवेशता होती थी?
नहीं
ब्रह्मा बाबा वॉज अलाइव, डिड शिव बाबा enter the body of Ram from 42 to 69. So Baba said no, because at that time the soul of Ram was not even in the basic knowledge. So one who is not even taken primary knowledge, how can he attain the knowledge of BA or in the higher studies? So at that time Shiv did not enter the body of Ram.
After
69 he entered in as a permanent champion. So this is what Bhai clarified in his own sense.
10 months after Brahma died, left his body. Yes, Brahma left his body only.
Mataji पूछ रही है कि ब्रह्मा बाबा ने तो जनवरी में शरीर छोड़ा था, लेकिन राम वाली आत्मा तो 10 महीने बाद ज्ञान में आई थी।
और बच्चा कितने महीने के बाद पैदा होता है?
How many months does a child take birth?
Yes, that's what August or something.
November. So it takes 9 months, 9 to 10 months. तो उस दौरान शिव की फिर प्रवेशता नहीं हुई क्या, वो पूछ रही है माता जी। 10 महीने बाद ही शिव की प्रवेशता हुई क्या?
अरे जब ज्ञान में थी नहीं, बेसिक नॉलेज ही नहीं ली, तो प्रवेशता की बात कहाँ से पैदा हो जाएगी?
तो उस समय किसी भी रथ में प्रवेशता नहीं हुई क्या?
किस समय? 9 महीने।
9 महीने
हाँ। और बच्चों में हुआ? जैसे है कि आज में बहुत बच्चों के नाम रखे और मर गए।
We did not enter because Brahma Baba was not alive and soul of Ram did not enter the path of knowledge. So how can he enter in the soul of Ram? So at that time he entered in some other children. लेकिन कोई दावा तो नहीं कर सकता कि भाई प्रवेशता हुई।
प्रवेशता हुई? वैसे जिन बच्चों में प्रवेश करके बाबा सर्विस करते हैं, दृष्टि देने की, दृष्टि की पावर देते हैं, ज्ञान की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, उनमें से कोई छाती ठोक के कह सकता है मेरे अंदर प्रवेशता हुई? फिर ये तो कोई भी नहीं कह सकता है।
बाबा पालना करते रहे ब्राह्मण परिवार।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
प्रवेश करके।
हाँ जी।
तो आई सेड शिव बाबा एंटर्ड आफ्टर बाबा।
या शिव एंटर्ड, बट ड्यूरिंग दोस 10 months बाबा इज टेलिंग दैट ही एंटर्ड इन some or the other Brahmin children and gave sustenance to the Brahmin family. Because he has to give sustenance. No, Brahmin family cannot remain unsustained. So he gave sustenance by entering in some or the other Brahmin soul. But that soul cannot claim that Shiv entered in me. He just enters and gives enthusiasm and zeal to the Brahmin souls.
That what happens now, object one.
No, object. Now, Brahma Baba enters in the Dali Bhutsa's body. But here in case of Gulzar Dadi, you can know that a particular soul has entered. But when Shiv enters, nobody knows. Nobody knows that Shiv has entered in me. That is the difference. बाबा अर्धनारीश्वर किसे कहेंगे? राम और कृष्ण की आत्माओं को, जगदम्बा और जगत पिता को, या राम वाली आत्मा और काशी नगरी को?
अभी तो थोड़ा एक दो दिन पहले मुरली चली है जिसमें ये क्लियर कर दिया है कि कंबाइंड पार्ट को अर्धनारीश्वर कहा जाएगा। माँ और बाप इकट्ठे हैं, माँ बाप इकट्ठे पार्ट बजाते हैं, वो माँ भी है और बाप भी है। अभी अभी एक दो दिन के अंदर वाणी चली, दो चार दिन के अंदर 63 या 65 की वाणी है। कब की है वो?
तो ये राम और कृष्ण की आत्मा के लिए।
हाँ जी, वही तो कंबाइंड होकर के माँ बाप का पार्ट बजा रही है।
बुद्ध को दशावतार में क्यों शामिल किया गया है? और ऐसा बताया जाता है कि शंकराचार्य ने ही महात्मा बुद्ध को 9वें अवतार के रूप में दर्शाया था, इसका क्या अर्थ है?
शंकराचार्य सन्यास धर्म की आत्मा है ना?
हाँ जी।
और सन्यास धर्म क्या शंकराचार्य से ही शुरू हुआ है या बौद्ध धर्म से ही सन्यास धर्म शुरू हो चुका था? तो बुद्ध ही सन्यासी पक्का है।
उनको दशावतार में क्यों शामिल कर लिया गया था? कई जैसे बिरला मंदिर वगैरह हैं, उनमें दिखाया जाता है बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में दिखा देते हैं।
भारतीयों में भारतीय धर्म की सपोर्ट में कौन सा धर्म सबसे ज्यादा सहयोगी बनता है प्योरिटी में,
बौद्ध धर्म,
तो उसका नंबर नहीं आना चाहिए।
Yes, Baba, that twice Buddha included among the 10 incarnations, Dashavatar. So Baba said that it is Buddhism which helps India in case of purity the most among all the religions. So that is why he is also, Buddha is also included in Dashavatar. And Shankaracharya revealed Mahatma Buddha in the form of 9th incarnation. It was Shankaracharya who revealed. So Baba said it is the sannyas religion did not start from Shankaracharya only. It started during the times of Mahatma Buddha also. So it is Shankaracharya who recognizes Mahatma Buddha by accepting him as the 10th this one incarnation. बाबा एक तरफ कहते हैं कि इम्प्योरिटी से दुनिया का विनाश होता है, राम वाली आत्मा जब पूरा देह अभिमानी अर्थात रावण बन जाती है तब दुनिया का विनाश होता है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि संपूर्ण आत्मिक स्थिति में टिका हुआ अर्थात स्वरूप निष्ठ व्यक्ति यदि संसार की हत्या भी कर दे तो उस पर पाप नहीं लगता, तो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या आत्मिक स्थिति से?
आत्मिक स्थिति जो है वो स्थापना की हुई नई दुनिया की सुरक्षा करती है और देहवान विनाश करता है। एक ही है स्थापना और विनाश का बीज, यज्ञ के आदि से ही है और अंत तक भी है।
Yes, Baba, that Baba says on one side that impurity causes the destruction of the world. When the soul of Ram becomes completely body conscious, that is Ravan, then the destruction of the world takes place. And on the other side, it is said that a soul which has become completely soul conscious, if it kills the entire, even if it kills the entire world, then it will not accrue any sin. It is said in Gita, Swarup Nishtha soul. So I asked Baba that whether destruction takes place through impurity or through soul conscious stage. So Baba said that soul conscious stage causes the safety of establishment. It safeguards establishment. And body consciousness causes the destruction of the world. कुछ बीके यह प्रश्न करते हैं कि दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा के बीच आयु के बड़े अंतर के कारण पीवी केज उनकी प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं मानते, किंतु एडवांस नॉलेज में प्रजापिता तथा जगदम्बा या प्रजापिता तथा योगिनी माँ के बीच भी आयु में बड़ा अंतर है, तो क्या इसे भी प्रवृत्ति कहेंगे?
बड़ा अंतर नहीं देखा जाता है, जवानी देखी जाती है आज की दुनिया के हिसाब से, और उनकी दृष्टि जिस हिसाब से काउंट कर रही है उस हिसाब से क्या देखा जाता है। राजाएं होते थे, 60-60 साल के राजाएं हो जाते थे, 16-17 साल की कन्याओं के साथ विवाह करते थे या नहीं करते थे? उनके माँ बाप अंधे थे, क्या देखते थे वो?
पद्मान मर्तबा देखते थे, राजा का पद्मान मर्तबा देखते थे कि हमारी कन्या जाएगी उनके घर, तो
और ये नहीं देखते थे कि ये जवान है या नहीं है,
वो तो
शौर्यवान है या नहीं है, शौर्यवान भी तो देखते थे। तो ऐसे ही जगदम्बा जो है वो तो 16-17 साल की हो चुकी थी जब 83 में, क्या उसका 66 का जन्म है, 66 से लेके 83 तक कितने साल हुए?
16
है,
66 से हाँ 16-17 साल हो गए,
18 साल भी लग गया है फिर। और जगदम्बा ओम राधे तो 14 साल की आई थी, 13-14 साल की थी, तो वो उसे क्या कहा जाएगा, बच्ची के समान कहा जाएगा कि पत्नी बनने योग्य थी?
तो बच्ची हो,
तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या हुआ था? ब्रह्मा बाबा का ओम राधे के साथ 14 साल की उम्र जब 14वां साल लगा तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? कन्या बच्ची का था, बेटी का था या पत्नी का था? फिर
बाद में संस्कारों के आधार पर यज्ञ माता,
हाँ योग्य बन गई तो उसको बना दिया यज्ञ माता।
ऐसे ही यहाँ भी हुआ कि वे जगदम्बा जब यज्ञ में आई थी तब 9 साल की थी, लेकिन बाद में फिर
कनेक्शन में, उस कनेक्शन में कब आई जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित? कब हुई?
83
में। 76 से
ना,
नहीं 83 से हुई।
वही बात फिर योगिनी माँ पर भी लागू हुई।
योगिनी माता था उससे भी ज्यादा उम्र की थी
यज्ञ में जब आई।
हाँ यज्ञ में जब आई नहीं, सरेंडर हुई तब।
सरेंडर
यज्ञ में आने से मैंने मकसद है कि सरेंडर होने से मतलब है, मतलब है
because Brahma Baba and Om Radhe Mama, there was a lot of age difference between them. So they say that TBKs don't consider them to be as a pravritti because of this reason. So same way here in advance, the soul of Ram and that of Yogini, there is a lot of age difference. So how can it will also called be a pravritti? So Baba said that pravritti is combined
household.
Male and female kind of thing.
Husband and wife.
Husband and wife. So Baba said that when giving the example of Jagdamba in 1983, she had almost attained the age of 18. And while Om Radhe Mama, when she was surrendered in the Yajna during the time of Brahma, she was only 14. So the first impression which Brahma Baba got was that of a daughter. Only after later on, when she had the abilities, was she placed on the position of Yajna Mata, that is to control the Yajna. But the first impression was that of her daughter. Baba also gave example of in the previous times of the kings, that the people would marry their daughters to the kings of age 60, and the daughters were of age 16, 17. Then what was the reason? Those people used to see the bravery of the kings, not just the age, the bravery and the influence. So similarly for Jagat Pita and Jagdamba, as Baba said, it would be called pravritti, that is household. Same for Yogini. It does not matter when did she come, but what matters is when she got herself surrendered in the Yajna. So when she got surrendered, her age was even elder to that of the of Jagdamba.
माना जगदम्बा भी 17-18 साल की थी और योगिनी माँ वो भी 17-18 साल की थी सरेंडर होने के बाद, तो दृष्टि क्या बनेगी? प्रजापिता की दृष्टि अभी भी दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? सब पुरुषों की लिस्ट में है या नहीं है? अरे बोलो ना, सच्ची बात बोलने में मुसीबत आती है, है? 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 सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, तो दृष्टि क्या थी? फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था?
प्रवृत्ति
का था, पुत्री का तो नहीं था।
बोथ जगदम्बा एंड योगिनी देवर ऑलमोस्ट ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज व्हेन दे गॉट सरेंडर्ड, सो द फर्स्ट इम्प्रेशन विच प्रजापिता हैड was not of a daughter but that of a pravritti of household. And Baba said, is Prajapita not counted in the list of Duryodhana and Dushasan? Certainly he is. So the vision which he through which he sees is not of a daughter but as a pravritti.
पीवी के कहते हैं कि एडवांस पार्टी में राम राज्य है और बेसिक में रावण राज्य है, यदि संगम में राम और रावण राज्य साथ साथ चलता है तो फिर ब्रॉड ड्रामा में राम और रावण राज्य एक साथ क्यों नहीं होता है?
ब्रॉड ड्रामा में रावण राज्य होता है द्वापर कलयुग में, और सत्ययुग त्रेता में होता है राम राज्य, और संगम युग में दोनों की शूटिंग होती है, होती है नहीं?
होती है।
तो दोनों की शूटिंग जो है अपनी अपनी मेंटेलिटी के आधार पर होती है या कोई दूसरा आधार है? मेंटलिटी के आधार पर
होती, लेकिन एक के बाद एक है, एक साथ नहीं होती।
नहीं होती, अभी हमारी मेंटलिटी जैसी है, दो क्षण के बाद मेंटलिटी बदल जाएगी। राम वाली आत्मा क्या रावण राज्य में नहीं जाती है?
जाती है
तो शूटिंग नहीं करती है, वो भी तो करती है। ऐसे ही हर आत्मा के लिए है, अपनी अपनी मेंटलिटी के आधार पर शूटिंग हो रही है। जैसे जैसे संकल्प है, संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो संकल्पों से ब्राह्मण सृष्टि नहीं रचते हैं, अपनी अपनी नहीं रचते हैं, रचते हैं। श्रीमत के अनुकूल संकल्प हैं तो सतयुग त्रेता की सृष्टि है, श्रीमत के विपरीत संकल्प चलते हैं तो द्वापर कलयुग की सृष्टि रचते हैं।
That decase, in decase there is Ravan Raja and in decase there is Ram Raja. These both are going simultaneously at this time. So why in the broad drama the Ravan Raja and Ram Raja they do not go hand in hand? So Baba said that in the broad drama the Ram Raja is in the golden and the silver age, Satyug Treta Yug, and Ravan Raja is in the copper age and iron age, Dwapar Yug and Kali Yug. But this is on the basis of our mentality. Giving example, Baba said at this moment we have a different mentality, and in the very next instant we have a different mentality. Right. So this is on the basis of our mentality. Does the soul of Ram not go in Ravan Raja? It certainly does. So it means that in the shooting period also the soul of Ram goes in the Ravan Raja. So it only depends on our mentality. And Baba also said that on the basis of our thoughts only we create our world. Just in the way that it is said that through the thoughts of Brahma, Brahma created his world. And similarly, through the thoughts of Brahmins also, Brahmins create their own world. So the main basis is on our mentality.
Baba, मालाओं के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं का नंबर कौन सी माला में आता है?
भगवान का एक माला नहीं है, और भी मालाएं बना देंगे क्या?
नहीं
बोला है, नहीं
बोला
तो बस हर धर्म की अपनी अपनी माला, चंद्रवंश की माला अपनी है, सूर्यवंश की माला अपनी है, इस्लाम वंश की माला अपनी है। हर धर्म में माला घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? तो क्या दूसरे धर्म की माला घुमाते हैं क्या? अपने धर्म में जो श्रेष्ठ आत्मा है उनकी माला घुमाते हैं, उनको कौन याद आते हैं?
धर्म की
श्रेष्ठ
याद आते हैं। He asked that Brahma and Saraswati, the soul of Brahma and Saraswati, they will be counted in which mala, which rosary? Souls of Brahma and Saraswati. Baba said there is not just one single mala. It has been said that Baba will make more and more malas. So according to the religion to which a soul is connected, they will praise the
souls of they will
rotate the rosary
na the beads of the rosary. So Baba says they will chant the names of those beads which are more righteous in their religion. Baba, क्या सम्राट अशोक का पार्ट प्रजापिता वाली आत्मा का ही है? अशोक की लाट को आज के भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
जब बाप दादा ही किसी का पार्ट क्लियर नहीं कर सकते तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं?
लेकिन बाबा तो बोलता है ना कि हर धर्म में
मूर्खता वाला प्रश्न हो गया ना कि ये पार्ट किसका है, कि वो पार्ट किसका है, कि वो पार्ट किसका है।
देखिए ज्ञान के आधार पर भी समझा नहीं जा सकता है कि बुद्ध धर्म में जो राजाई की स्थापना का कार्य है तो वो शुरुआत, राजाई की शुरुआत तो असली अशोक के द्वारा ही होती है, सबसे ज्यादा फैलाने के निमित्त वो बनता है।
अशोक पहले तो हिंसक राजा था।
हाँ जी,
तो वो राजा बौद्ध धर्म का राजा था क्या?
पहले तो हिंदू था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया।
तो फिर राजा रहा?
सब तो सन्यासी हो गए।
He asked that the part of Emperor Ashok, is it that of Prajapita? Because even in the national emblem, the Ashoka is shown. So Baba said, this is a question of foolishness, because Baba himself does not declare any part. So how can we go on declaring parts? Plus Baba explained that before being taking this sannyas, this Emperor Ashok was a violent king, and later on he took sannyas, so he no longer remained a king. So he was not a soul of Buddha religion initially. Only after taking sannyas he was not no more a king.
बाबा हम जब बीकेस को कहते हैं कि बीकेस ने ओरिजिनल मुरलियों को संभाल कर नहीं रखा, तो किसी बीके ने यह पॉइंट एक मुरली का जो है इंटरनेट पे सुना दिया, ये 3982 की मुरली है, अब तुम समझते हो कि ज्ञान का सागर अर्थात अथाह ज्ञान देते रहते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे, हम यह मुरली इकट्ठा कर सकेंगे क्या? यह रखने की चीज नहीं है, शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं, हम जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएगा, कहां हमारे 2-4 हजार, कहां उन्हों की करोड़ों की अंदाज में गीताएं बनती हैं, सब भाषाओं में सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता का बहुत मान है, गीताएं शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे। तो हमने ये जवाब दिया कि उस समय के बीकेज ने सोचा कि बाबा तो ब्रह्मा के द्वारा अंत तक ज्ञान सुनाता रहेगा, इसलिए उन्होंने मुरलियों का रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन उक्त मुरली के अनुसार क्या अंत में बेसिक की मुरलियों का मान खत्म हो जाएगा?
जो भगवान साबित किया जाएगा उसका मान रखेंगे, या जो देहधारी धर्म गुरु साबित होंगे उनका मान रखेंगे?
जो भगवान का पाठधारी साबित।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ब्रॉड ड्रामा है उसमें ब्रह्मा मुख से वेद उच्चारण किए गए उनका मान रखा गया, वो ज्यादा पढ़ते हैं या दूसरे शास्त्र ज्यादा पढ़ते हैं?
गीता ज्यादा पढ़ते हैं।
गीता ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसे ही है। गीता ज्ञान, जिसे हम गीता ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञानामृत कब कहा जाता है?
जब मंथन होता है।
तो 18 जनवरी तक गीता को हम अमृत कहें, गीता ज्ञान अमृत कहें?
उस समय तो अमृत नहीं कहें,
नहीं था, तो भगवान की उच्चारण की हुई चीज नहीं हुई, ब्रह्मा की उच्चारण की हुई चीज मानी जाएगी, भगवान की उच्चारण की, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले की उच्चारण की हुई वाणी नहीं मानी जाएगी, तो लोग उसका मान क्यों रखेंगे? जिससे फायदा होगा उसका मान रखेंगे, या जिससे फायदा ही नहीं हुआ उसका मान रखेंगे?
वो
फायदा किससे हुआ?
फायदा तो एडवांस ज्ञान से हुआ।
तो जो ज्ञान अमृत है, अमृत पीने से अमर बनेंगे, या जो अमृत नहीं है उसे पीने से अमर बनेंगे?
अमृत पीने से।
तो अमृत तो सागर से ही आता है।
यहाँ तो संख्या भी टैली हो रही है कि वो 2-4 हजार हमारे कह रहे हैं, तो है? हमारे 2-4 हजार तो वही हो गए जो जिनके इनके पास स्टॉक है, जो रिवाइज मूल्यां हैं, और जो गीताएं हैं वो तो करोड़ों की संख्या में जो है छपेंगे बोल रहे हैं, तो वो फिर एडवांस नॉलेज से टैली होता है कि जो सच्ची गीता है।
नहीं बोला है बाबा ने, बोला है तुम्हारी मुरली अभी तो कम छपती है, आगे चल करके करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी, लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स खुल जाएंगे।
वो यहाँ के लिए एडवांस,
यहाँ की बात है ना कि वहाँ की बात है?
I asked a question that when we tell the BKs that they have not kept the original Murli safely, so one of the BKs quoted a Murli in which along with other things it was said that how far can you safeguard the Murlis, these are not things to be kept safely, shastras, the scriptures are useful in the path of bhakti, but whatever we write will not be, whatever we write now, that is during the time of Brahma Baba, will not be useful later on. Our 2 to 4 thousand murlis and their Gitas in crores, their Gitas are published in crores and in all the languages, and Gita is considered to be the highest among all the scriptures. So many people read Gita. So I replied to them that the BKs of that time had thought that Baba would be narrating Murli's knowledge through Brahma Baba till the end. That is why they did not keep the record of Murli's. But I asked Baba that according to the above Murli point, will the respect for the basic Murli's diminish in the end? So Baba said yes, why not, because that Murli is just Gita, but it was not Gita Gyan Amrit, nectar of the God, knowledge of Gita. It was not churned. So it becomes useful only when it is churned and becomes the nectar of knowledge. So this nectar of knowledge will be published in crores. And those Murlis are only in 2,000 to 4,000. That's what he is telling. And the centers will also open in lakhs. So that's not about the basic center, it is about the advanced centers. एक किसी ने बीके ने प्रश्न पूछा था कि भाई पीबीके का अलौकिक जन्म या उनको मुखवंशावली कब माना जाएगा?
पीबी केस को
अलौकिक जन्म हुआ कब माना जाएगा या वो मुखवंशावली कब माने जाएंगे? जब वे एडवांस ज्ञान सुनते हैं और उस पर निश्चय पैदा करते हैं, या जब वे शिव बाबा के रथ को साकार में देखते हैं कंपिल में या किसी भी जगह पर, या जब वे साकार रथ को टीवी के द्वारा या वीसीडी के द्वारा देखते हैं और निश्चय पैदा कर लेते हैं? मतलब किस समय उनको मुखवंशावली माना जाएगा, जब वे साकार में मिलते हैं तब, या अगर मतलब टीवी पर भी देख लेते हैं और निश्चय पैदा कर लेते हैं तब, या सिर्फ एडवांस नॉलेज सुन के भी अगर निश्चय पैदा कर लेते हैं तब?
बाप का बच्चा बाप की गोद में जब तक नहीं भी आया है, पैदा तो हो चुका, बाप के घर में आ चुका, गर्भ में रहा, तो बच्चा नहीं है। बच्चा तो है, अब वो सौतेला है, मातेला है, ये फिर बाद में प्रत्यक्ष होगा जब फाइनल पेपर होगा।
माँ बाबा से मिलने के बाद भी नहीं,
वो जरूरी है, विरोधी नहीं हो जाते हैं, विष्णु पार्टियां नहीं बनाते हैं,
बनाते हैं
तो फिर
मैं फाइनल परीक्षा के बाद ही पता चलेगा कि सौतेला है या
मातेला है। मातेला
लास्ट डेट व्हेन वुड पीबीकेस बी कॉल्ड कंसीडर्ड टू बी एज माउथवॉर्म प्रोजेनी, व्हेन दे लिसन टू द एडवांस नॉलेज और व्हेन दे मीट द साकार रथ ऑफ बाबा face to face, or is it when they see the Sakar Rath in TV, VCD and listen to the knowledge? On what basis, when would be called as the mouth-born progeny? So Baba said, even when a child is born, even though if he has not come in the lap of his father, but he is already born, he has stayed in the womb of mother, but it gets revealed later on whether he is Matela or Sotela, what Baba says, that is of
the own mother and the stepmother.
So this gets revealed later on. Okay. But definitely it would be called yes, the child has taken birth.
Okay. Advanced Gyan ke hisab se late ka board kab laga tha aur too late ka board kab lagega? Aur क्या 2018 को टू लेट माना जा सकता है?
जो संपन्न स्टेज वाले हैं वो कितने हैं?
संपन्न स्टेज 108
है, 108 में दूसरे धर्म वाले नहीं
है, तो फिर सूर्यवंशी।
हाँ, सूर्यवंशी जो 8 हैं, उनका अगर डिक्लेरेशन हो गया
तो टू लेट का
तो फिर टू लेट का वोट तो लग गया, लेकिन कहा नहीं जाएगा, कहा जाएगा सिर्फ लेट हुए है, अभी भी 108 में आ सकते हैं।
तो टू लेट का वोट कब लगेगा?
जब 4 जब 8 प्रत्यक्ष हो गए, 8 की प्रत्यक्षता हुई तो लेट तो हो गई, ये पक्का है। लेकिन अभी टू लेट नहीं हुए हैं, अब राज परिवार के राजाएं बन सकते हैं। पढ़ाई का जो लक्ष्य है राजा बनना, वो 108 में आ सकते हैं, वो भी ना आए तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ी और राजा नहीं बने तो टू लेट हो गए ना।
माना 8 की प्रत्यक्षता को लेट का बोर्ड कहेंगे और
लेट हो गया,
108 जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब टू लेट
हो गया।
I asked Baba that as per advanced knowledge, when is it late and when it is it too late? Whether 2018 would be considered to be too late? So Baba said that the time when the 8 are revealed, first 8, that is late, and when 108 kings are completely revealed, then it is too late. Means even after the 8 are revealed, there is still time for people to enter into the rosary of 108 kings. But once the 108 kings are also revealed, then it is too late.
No point.
No point. अब राजा नहीं हो सकते।
Then you cannot become king.
अब राजीव की पढ़ाई पढ़ने का कोई फायदा नहीं।
लेकिन उसके आगे की माला में तो जा सकते हैं ना बाबा?
हैं?
उसके आगे के 16,000 की या 9,00,000 की माला में तो जा सकते हैं?
जाओ तो गरारी बरक करके खींची जाती है, 10-20 लोग मिलकर के खींचते हैं।
बाबा इज टेलिंग द रोजरी ऑफ 16,000 और 9,00,000 इज केप्ट इन ह्यूज स्टोर रूम्स एंड दे आर पुल्ड लाइक दिस, दे आर नॉट चैंटेड विद हैंड्स।
वो माउंट आबू में जा रहे हैं ना, 10-10, 15-15 की पार्टी बना करके।
I have already a 1965 CD with Brahma Baba's voice. Hmm. 1965 June 5th, spoken on June 5th, 1965.
अच्छा माताजी कह रहे हैं उनके पास ब्रह्मा बाबा की 1965 की एक
जून फिफ्थ
5 जून की 1965 की मुरली है ब्रह्मा बाबा की।
अब तो
सीडी
उस समय की सीडी है, उस डेट की कह रहे हैं।
अरे अभी तो आपकी 62-63 से लेकर के 68 तक की सारी मुख से सुनाई जा रही है आपको, सारी सीढ़ियाँ सुनाई जा रही
है। बाबा इज टेलिंग दैट मुरली फ्रॉम द पीरियड ऑफ 63 to 68-69 आर बीइंग नरेटेड नाउ इन द एडवांस नॉलेज, क्लैरिफाइड, दे आर बीइंग क्लैरिफाइड। यू हैव जस्ट वन मुरली बट द मुरली फ्रॉम 63 to 68-69 आर बीइंग क्लैरिफाइड नाउ। बीके से उनको मिली होगी एक सीढ़ी कोई
लिटरेचर
डिपार्टमेंट, जो दूसरों को दे रहे हैं ना सबको खुले रूप में, वो भी काट पीट के दे रहे हैं।
बाबा इज टेलिंग दैट द मुरलीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग ओरिजिनल मुरलीज दे आर आल्सो एडिटेड।
नो दिस इज द सीडी बाबा वॉइस
वॉइस बट दे कैन टुडेज टेक्नोलॉजी इज सच दैट दे कैन एडिट एनीथिंग ऑन कंप्यूटर, एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्रूफ्स ना एडवांस पार्टी दैट बाबा इज said such things in the Brahma Baba's voice also. So they edit even those murlis. Baba, yagya ke adi mein prajapita ke rehte rehte jin BKs ne alaukik janam liya tha, kya unhe PBK ya mukhvanshavali kaha ja sakta hai?
PBK kahan se ho gaye jab prajapita pratyaksh hi nahi hua?
Janam to diya.
Janam diya, lekin amma ka janam उनकी बुद्धि में साबित हुआ या बाप का जन्म प्रत्यक्ष हुआ?
अम्मा ज्यादा प्रत्यक्ष होगी,
बच्चों के सामने तो अम्मा ही प्रत्यक्ष होती है ना, पहले तो हुई
तो उस समय नहीं कहेंगे।
चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो कोई वंशी हो, जो भी ब्रह्मा की गोद के बच्चे हैं वो तो सब माँ के ही, माँ को ही सब कुछ समझते हैं।
पीवी केज नहीं कह सकते लेकिन मुखवंशावली तो कह सकते हैं।
उस समय मुखवंशावली तब कहें जब मुख से निकली हुई वाणी पर विश्वास करें। ब्रह्मा ने ही मुख से निकली हुई वाणी पर विश्वास नहीं कर पाया ये बाप है, तो दूसरे जो प्रवृत्ति है वो कहां से विश्वास कर लेंगे।
फिर 76 के बाद जो आ रहे हैं वही मुखवंशावली हुए।
हाँ जी,
मुखवंशावली भी और पीवी के भी।
हाँ जी।
आई आस्क बाबा दैट वेदर द बीकेस हु टुक अलौकिक बर्थ व्हेन प्रजापिता वॉज अलाइव इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ कैन दे बी कॉल्ड पीबीकेज और माउथ बॉर्न प्रोजेनी। सो बाबा सेट दैट when there was no knowledge at all, they did not accept the knowledge at all at that time. Even Brahma Baba did not accept the knowledge that this is Prajapita. So how can they be called mouth-born progeny or PVKs? It is only after 76 that they can be called PVKs or mouth-born progeny.